दिनकर का जीवन वृत्त। हिंदी साहित्य के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण से कृषक परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिमरिया के मिडिल स्कूल में ही संपन्न हुई। मिडिल पास करने के पश्चात इन्होंने मुकामा घाट के स्कूल में प्रवेश लिया और वहाँ से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1932 ईस्वी में पटना से बीए ऑनर्स इतिहास की परीक्षा पास की। परीक्षा इसके पश्चात इन्होंने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। सन 1932 ईस्वी तक इन्होंने एक स्कूल के मुखाध्यापक का पद सुशोभित ही नहीं किया बल्कि अपने कर्म कुशलता से सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी किया। तदुपरांत इनकी नियुक्ति सब रजिस्ट्रार के पद पर हुई। वहाँ भी इन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता का प्रभावशाली प्रमाण दिया। सन 1947 में इन्होंने युद्ध प्रचार विभाग में हिंदी डायरेक्टर के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात कुछ दिनों तक भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भूतकाल में भारत की संसद के मनोनीत सदस्य थे। दिनकर में काव्य प्रतिभा जन्मजात कही जा सकती है। जब ये विद्यार्थी जीवन में ही थे तभी इनकी दो कृतियाँ बारदोली विजय और प्रणभंग प्रकाशित हो चुकी थी। कालांतर में यही प्रतिभाचरम विकास की ओर बढ़ती गई। आज कवि तथा चिंतक के रूप में इनका अपने ही देश में नहीं विदेशों में ही पर्याप्त सम्मान और प्रभाव है। यह अत्यंत प्राणवान व्यक्तित्व संपन्न कवि थे। इनके व्यक्तित्व की भावुकता तथा कर्मठता इनके काव्य में सफलता से अभिव्यक्त हुई है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय यह था कि राजनीति में प्रवेश के पश्चात भी इनका साहित्यिक जीवन निरंतर प्रगतिशील था और अनेक नवीन रचनाओं से हिंदी माँ के गौरव में अभिवृद्धि कर रहे थे। जब इनका उर्वशी महाकाव्य प्रकाशित हुआ तब उसके प्रकाशन ने हिंदी साहित्य में मृतप्राय महाकाव्य परंपरा को नवजीवन प्रदान किया। काव्य प्रेरणा। संस्कृत काव्य शास्त्र के अग्रणी आचार्य और काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य हेतु इस प्रकार बताए हैं। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु दुर्भवे। अर्थात शक्ति अथवा कई प्रतिभा, निपुणता अथवा व्युत्पत्ति, जो लोक जीवन के अनुभव निरीक्षण, शास्त्रों के अनुशीलन और काव्य इत्यादि के विवेचन का परिणाम है, तथा अभ्यास या कवि और काव्य विमर्शक के उपदेश का अनुसरण करना काव्य के हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वही व्यक्ति कवि बन सकता है जिसमें कई प्रतिभा है, निपुणता है, लोक जीवन से अनुभव, शास्त्रों का अनुशीलन और काव्य आदि का विवेचन करने की शक्ति है। जो निरंतर काव्य रचना में अभ्यासरत रहता है, अन्य कवि तथा काव्य कृतियों का अनुसरण करने का प्रयास करता है। दिनकर की काव्य प्रेरणा के विषय में भी ये वाक्य अक्षरशः सत्य सिद्ध होते हैं। इनके जीवन की कोई भी ऐसी घटना ज्ञात नहीं जिससे भावाभिभूत होकर इनकी कविता आंखों से चुपचाप निकलकर अनजाने ही बह निकली हो। इनका काव्य तो सुख निरीक्षण, पर्यवेक्षण, विवेचन, अनुसरण और सतत अभ्यासपूर्ण प्रयासों की परिणति है। अपनी काव्य प्रेरणा के विषय में चक्रवाल की भूमिका में स्वयं कवि ने जो विचार प्रकट किए हैं तथा उनकी कृतियों में जिन विचारों का अनुमान किया जा सकता है उनके आधार पर उनकी काव्य प्रेरणा का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकता है। नाटकों और रामलीलाओं का प्रभाव, हिंदी और अहिंदी कवियों का प्रभाव तथा तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव। पहला, नाटकों और रामलीलाओं का प्रभाव। बालक दिनकर जब कभी भी किसी नाटक अथवा रामलीला को देखते तो उनके गीतों के धुन उनके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगती। जब तक वे उन धुनों पर आधारित गीतों की रचना न कर लेते तब तक उनका मन उदास और खिन्न रहता। इस प्रकार उनका काव्याभ्यास निरंतर बढ़ता गया। स्वयं कवि ने सत्य को इन शब्दों में स्वीकार किया है। चक्रवाल के पृष्ठ संख्या 25 में लिखते हैं, जहाँ तक याद है कविता लिखने की प्रेरणा मुझे नाटक और रामलीला देखकर उत्पन्न हुई। जब भी मैं नाटक वालों के मुख से कोई गीत सुनता दूसरे दिन उसी धुन में एक नया गीत बना लेता। हिंदी कवियों में गोस्वामी तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमार चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रभाव विशेष रूप से बाल कवि दिनकर पर पड़ा। इस प्रभाव की स्वीकृति दिनकर ने इस प्रकार की है। उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत यह प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के ही आसपास की बात है। जब मैं 8-10 साल का रहा हूँगा तब सन 1920 में कानपुर के प्रताप में एक भारतीय आत्मा की वह कविता छपी जिसे उन्होंने लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर लिखा था। इस कविता का मुझ पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। पत्र पत्रिकाओं से रस पाकर जब मैं समकालीन काव्य पुस्तकों की ओर बढ़ा तब मुझे भारत भारती मिली, जयद्रथ वध और शकुंतला तथा किसान पढ़ने का अवसर मिला एवं जब श्री रामनरेश त्रिपाठी का पथिक निकला मैं उस ग्रंथ में आपाद मस्तक डूब गया। पथिक मुझे इतना पसंद आया जितना और कोई ग्रंथ नहीं जचा था। उन्हीं दिनों मैंने पथिक के अनुकरण पर वीरवाला और जयद्रथ वध के अनुकरण पर मेघनाथ वध ये दो खंडकाव्य लिखने आरंभ किए, किंतु दोनों के दोनों प्रयास 3-4 सर्गों तक चलकर ही अवरुद्ध हो गए। उद्धरण चिन्ह बंद, चक्रवाल, पृष्ठ संख्या 25। अहिंदी कवियों में शेली, वर्ड्सवर्थ, रविंद्र, नजरूल, इकबाल और जोश का इन पर काफी प्रभाव पड़ा। उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत कॉलेज में मुझमें शेली और वर्ड्सवर्थ दोनों के लिए उत्साह था और बंगला सीखकर तभी मैंने रविंद्र और नजरूल से ही परिचय पढ़ा लिया था। पीछे जब मैं नौकरी करने लगा तब मैंने उर्दू सीखी और इकबाल तथा जोश का मैं भक्त बन गया। उद्धरण चिन्ह बंद, चक्रवाल, पृष्ठ संख्या 27। तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव। दिनकर के काव्य में जो हुंकार और आग है इसका आविर्भाव तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिचय तथा प्रभाव के कारण ही हुआ। उन दिनों समूचा देश स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था। देशभक्तों के नित्य नए बलिदानों की गिनती निरंतर बढ़ती जा रही थी और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भारतीयों के जीवन में नवाशा और नवचेतना का संचार कर रहा था। इन परिस्थितियों से दिनकर के मानस का अदम्य विद्रोह कविता का माध्यम लेकर फूट पड़ा। इस विद्रोह में इनके प्रांत की सामाजिक दारुण परिस्थिति ने आग में घी का काम किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रांत की दयनीय स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। दिनकर ऐसे प्रांत का कवि है जहाँ निर्धनता अट्टहास करती है। वर्ग वैषम में भी बिहार से अधिक शायद रियासतों में ही मिले। इसके अतिरिक्त इन बेचारे भूखे नंगों की प्रकृति के खूनी दांतों और पंजों का भी शिकार बनना पड़ता है। विचार अनुभूति, पृष्ठ संख्या 81। इस वातावरण में रहकर दिनकर की कविता राष्ट्रीयता के आवरण में क्रांति एवं आग उगलने लगी और इनकी चेतना में साम्यवाद बैठ गया जो कुरुक्षेत्र में अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ। वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, रसोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष उसकी शीराएं तोड़ो डालियां कतर दो। काव्य जगत के जाजुल्यमान कवि से काव्य रसकों का भविष्य बड़ी महत्व अपेक्षाएं थी पर दुर्भाग्यवश क्रूर काल ने उन्हें 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हमसे छीन कर ले गया।